Hello everyone, welcome to the Mridu Sachan Show. Today we have Shivi Gupta ma'am with us. Welcome to the show ma'am. Kaise hain aap?
Hello Mridul. Hi and hi guys. Thank you for inviting me in your show. And hello everyone. My name is Shivi Gupta and presently I am working as assistant manager in Canara Bank.
All right. तो मैम आपने बैक टू बैक 4 एग्जाम क्लियर किए हैं तो आज हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपका सक्सेस मंत्रा भी जानेंगे। तो सबसे पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए।
Man, and basically I'm from Kanpur and my father is a working as a charge man ordnance factory equipment Kanpur and my brother sister is presently working as a IT sector.
ओके मैम, तो हमारे लिसनर्स को बता दीजिए कि आपने कौन कौन से 4 एग्जाम्स क्लियर किए था।
My first exam was LIC as an assistant and the second one is PNB as a clerical. And third one is Indian Overseas Bank as a probationary officer, and fourth one is in Canara Bank as an assistant manager.
तो मैम इन 4 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और सबके लिए सेम थी या अलग-अलग?
मैं प्रिपरेशन कर रही थी बैंकिंग सेक्टर की, फिर एक एग्जाम आता, सडनली एक नोटिफिकेशन आता है LIC के लिए, तो मेरे को नई आइडिया है कुछ LIC क्या इंश्योरेंस का, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया और मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा ही हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी मेरे सिबलिंग्स जो हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर में ही हैं, तो मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं. मैं नोटिफिकेशन देखा फिर मेरे को लगा हाँ ठीक है, चलो असिस्टेंट है ठीक है, सैलरी ठीक है, मैं डाल दी, मैंने फिल कर दिया एग्जाम, अप्लाई किया उसके लिए. उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर का चल रहा था, बैंक में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, प्रीलिम्स निकल रहा था, कभी मेंस निकला, तो फिर मैंने ये डाला, ये अप्लाई किया, तो फिर मेरा LIC का निकल गया. उसके बाद फिर मेरा बैक टू बैक क्या हुआ ना, बीच बीच में थोड़ा सा ड्रॉप होता रहा, क्लैरिकल निकला तो साथ में दोनों निकल गया, असिस्टेंट वो दोनों क्लैरिकल ही था, सेम कैडर था, तो वो दोनों तो एक ही उसमें निकल गए. फिर बाकी मैंने आगे धीरे धीरे प्रिपरेशन की तो फिर अदर एग्जाम्स भी क्रैक किए. स्ट्रेटजीज लगभग सेम ही थी क्योंकि सिलेबस सेम है चारों एग्जाम्स का, मेरा तीन तो मेरे बैंकिंग के ही हैं तो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही थे, बस ये है कि ऑफिसर कैडर पे इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, बाकी अदर में दो दो प्रीलिम्स और मेंस दो ही एग्जाम्स थे, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इंश्योरेंस लिए कुछ अलग से चीजें एड ऑन करनी पड़ी, लाइक इंश्योरेंस का क्या इंश्योरेंस है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की सब इंश्योरेंस चीजें थोड़ी बहुत एड ऑन करनी पड़ी चीजों में, बट लेकिन ठीक था ओवरऑल, सेम स्ट्रेटजी से आप इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं.
ऑल राइट मैम, तो आपने टेक्सटाइल से बीटेक किया, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के पीछे कोई खास वजह?
मैंने टेक्सटाइल से बीटेक किया, उसका फिर मैंने फर्दर सोचा कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ एज ए प्रोफेसर, कर सकते हैं चीजों को आगे ले जा सकते हैं, तो मैंने IIT में जाके कुछ प्रेजेंटेशन 2-3 दी, फिर मैं वहाँ के कई फैकल्टीज से मिली, चीजों को देखा मैंने, फिर मेरे को लगा यार यहाँ तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहले मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, देन PhD, तब जाए कहीं मैं प्रोफेसर या अदर किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, और मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो मैंने देखा कहीं ना कहीं चीजें लीनियंट होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, एक तो जॉब स्टेबिलिटी नहीं है और फिर लाइफ को बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वर्क प्रेशर काफी हद तक है वहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट से मैं पापा को देख रही थी अपने बचपन से, कितना कुछ प्रेशर नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक है, कि आप अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार एक बार गवर्नमेंट जॉब को भी ट्राई करके देखते हैं ना यार, एक वो ऑप्शन है, अगर नहीं होगा तो फिर कहीं तो फिर टेक्सटाइल में कंटिन्यू करना ही है.
जी मैम, तो मैम मैं जानना चाहूंगा कि आपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे किया, क्योंकि आप एक जॉब कर रही थी, फिर बीच में सेकंड जॉब में स्विच किया, देन सिमिलरली थर्ड और फिर फोर्थ जॉब, सो व्हाट वाज योर वे ऑफ मैनेजिंग स्टडीज विद जॉब?
9 to 5 जॉब है, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है चीज़ों को बैलेंस करना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ें आने लगती है ना, एक कंफर्ट जोन आ जाता है माइंड में कि नहीं यार अभी तो सैलरी आ रही, तो अभी तो लगने लगता है ना कि चलो ठीक है अभी नहीं करते हैं, अभी ठीक है स्टेबिलिटी है. और फिर मेरी तो फर्स्ट जॉब काफ़ी ज़्यादा चिलिंग थी, हाँ मतलब बढ़िया, सुबह जा रहे हैं कुछ ऐसा काम नहीं है, 5 बजे आ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बहुत चिल था हमारा, इवन ये था ना कि हमारे जितने एक्स्ट्रा काम होते थे ना जो घर के भी हैं वो हमारे वर्किंग आवर्स में ही करते थे हम, क्योंकि इतना ज्यादा चिल था, लगता था यार सही है जॉब. और हमारे साथ जब सिलेक्शन हुए तो हमारी सेम मतलब दो ब्रांचेस थी, मैं रायबरेली पोस्ट करती एक्चुअली LIC में जो मेरा असिस्टेंट कैडर था, तो वो दो ब्रांचेस थी वहाँ अगल बगल, और हम 30 लोग थे जो सेम ब्रांच पे पोस्ट कर दिए, लगता इनका गवर्नमेंट जॉब है, लगता था मास रिक्रूट होके आए हैं कॉलेज से सीधा, कभी फील ही नहीं आया यार तो गवर्नमेंट सेक्टर है, या हम किसी को जानते नहीं, क्योंकि हम 30 लोग सेम एज ग्रुप के, थिंकिंग मैच कर रही चीजों के लिए, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, चिल करते थे, सारे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, तो लगता था बहुत अच्छी जॉब थी। तो कभी ऐसा कुछ माइंड में आया नहीं, फिर सडनली यार क्रैक करता है माइंड में कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा अभी है, 6 महीने तो ऐसे ही निकल गया, फिर लगा यार मजा नहीं आ रहा, कुछ और करना पड़ेगा, अभी यहाँ से निकलते हैं ना, बहुत हो गया क्लर्क क्लर्क के यार, कुछ तो अथॉरिटी मिलनी चाहिए, साइनिंग पावर होनी चाहिए हाथ में, फिर
जी
वापस है चलो ठीक है कुछ करते हैं कुछ करते हैं। स्टार्ट किया, एग्जाम दिया, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, फिर इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ इंटरव्यू में, मेरे को इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं, 65 मिला, मैं वेटिंग में रह गई, रिजर्व लिस्ट में थी मैं, मेरे को थोड़ा लगा यार कि पता नहीं शायद कहाँ कमी रहेगी, नहीं कुछ समझ में आया, दुख भी हो रहा था, और लेकिन फिर वही है कम्फर्ट जो, नहीं चलो कोई नहीं, घर वाले ही बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे पास तो जॉब है ही है, तुम तो कर ही रही हो ना जॉब, फिर लगता है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है, उसका फिर ऐसे ही चलता रहा, जॉब चल रही है, चिल कर रहे हैं, मोटिवेशन आ रहा है क्यों, क्योंकि एक माइंड में चीज है कि मेरे को ऑफिसर बनना है यार, क्लर्क से तो निकलना है, इतना पढ़ के क्लर्क बनने थोड़ी आए थे यहाँ पे यार, वहाँ
जी
डॉकेट बना रहे हैं, फिर लगता है अरे क्लर्कल बनने आए थे क्या यहाँ पे, नहीं यार ऑफिसर बनना होगा
जी हाँ,
यही सब
मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगा, किसी भी मैम के बड़े भाई सचिन गुप्ता गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट इन 2016। उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है, टीएमएसएस के एपिसोड 9 में वो गेस्ट थे। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू लिसन टू दैट एपिसोड एज वेल। तो जब आपके बड़े भाई की रैंक 1 आई, उसके बाद से आप पर पढ़ाई को लेकर प्रेशर बढ़ गया, या आपने ऐसे ऐसे मोटिवेशन लिया कि मेरा भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं?
एक्चुअली मैं और मेरा भाई वी आर फ्रॉम सेम कॉलेजेस, जब भैया फाइनल ईयर में थे तभी मैं सेकेंड ईयर में थी सेम कॉलेज में, तो आप उस टाइम को फील कर सकते हैं ना कि क्या प्रेशर रहा होगा, किसी के भैया की फर्स्ट रैंक आ रही, एक तरह से यहाँ पर कंग्रेचुलेशन लोग बोल रहे हैं, बट माइंड में ये भी आ रहा है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लोग मुझे कैसे जज करेंगे, है ना, ये होता है ना कि मतलब घर में से एक किसी की फर्स्ट रैंक आ रही तो फिर वो माइंड में प्रेशर भी आ रहा है यार, भैया की तो आ गई यार, मेरे को नहीं कुछ समझ में आ रहा क्या, मैं कहता मैं कॉलेज में पढ़ रहा, मैं कॉलेज खत्म कर रही हूँ, उसका फिर जॉब का कुछ समझ नहीं आ रहा यार, तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, घर पे भी बोला जा रहा है कि प्राइवेट जॉब है, स्टेबिलिटी नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर को उतना बेटर नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो माइंड में वो सब चीजें आनी, फिर मुझे लगा चलो एक बार ये ट्राई करती हूँ, ट्राई किया कुछ खास हुआ नहीं मुझसे, मुझे समझ में नहीं यार मेरे लिए नहीं बना है ये, अभी कुछ और ही देखना पड़ेगा मुझे यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन हाँ भैया का था, भैया का मोटिवेशन था कि हाँ मोटिवेट करते रहते थे वो हर जगह कि अभी देखो मैंने भी ट्राई किया, मेरे को भी तो दो तीन अटेम्प्ट लगे ना फर्स्ट रैंक लाने के लिए, तू भी कर सकती है, तू भी कुछ कर कुछ सोच, तो फिर मुझे लगा नहीं यार चलो गवर्नमेंट डायरेक्टर का सोचते हो, तो एक तरह से मोटिवेशन भी था एक तरह से प्रेशर भी था, बट ये वो डिपेंड करता टाइम टाइम पे, किसी टाइम वो प्रेशर क्रिएट करता था, किसी टाइम वही चीजें मोटिवेट करती थी, लगता जब लगता था कि हाँ यार अभी नहीं हो रहा, फिर उसी से मोटिवेशन आता था कि देखो भैया ने इतना टाइम दिया खुद को उनसे हुआ, तो ऐसे भी होगा ना मैं अगर करूंगी तो।
ऑल राइट मैम, तो अगर आपको डिफरेंस बताना हो कॉलेज की सीवी में और आज 4 एग्जाम क्लियर करने के बाद की सीवी गुप्ता में, तो वो डिफरेंसेस क्या होंगे?
जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैं जस्ट स्कूल खत्म की, स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हुई, मैंने जस्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एकदम छोटी बच्ची डरी से भी थी, शायद किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करती थी, बस बॉय से तो मैंने कभी आई कांटेक्ट किया ही नहीं, मेरे को समझ में देख ही नहीं पाती थी उसी तरह, एकदम चुपचाप अपना क्लास वर्क करना, मैंने कॉलेज ऐसे किया ऐसे स्कूलिंग चल रही हो, मैं क्लास में सुबह कॉलेज जाती थी, अपना लंच अपने साथ लेके जाती थी, क्लासेस करती थी, लंच में लंच करती थी, फिर शाम में क्लासेस करती थी,
जी
5 बजे कॉलेज खत्म मैं घर आ जाती थी, 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, मैंने कुछ ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं, बस अपना जो लोकल ये थे जो बाकी लोकल लोग, बस मैं उनसे ही फ्रेंडशिप थी, तो मैं अपना अपने ही उसमें रहती थी, अपने ही जोन में, क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, कॉलेज में इतना कुछ हो जाता था मुझे गॉसिप नहीं पता होती थी कि क्या हो रहा है कुछ इतना मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत पढ़ती थी, मैं कोई कभी ऐसा टॉपर ऑपर भी नहीं रही कॉलेज में, स्कूलिंग में टॉपर थी, कॉलेज में मैं कभी टॉपर ऑपर नहीं, मैंने कभी टॉप नहीं किया 4 सालों में, कॉलेज जा रही हूँ घर आ रही हूँ कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि डे स्कॉलर का कॉलेज कैसा होता है उनका, तो कॉलेज स्कूल की जैसा ही होता
जी मैम,
है ना, क्योंकि हमें तो हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं करने को मिलती है, तो फिर उस टाइम की उसका, फिर जब कॉलेज से निकले तो समझ में आया चीजों को तो चेंज करना होता है ना समय के साथ, चेंज करो खुद को इम्प्रोवाइज करते चलो, तब फिर वहां से निकलने के बाद फिर जब मैं IIT गई, मैंने जब प्रेजेंटेशन दी वहाँ सर से मिली, अमित रावल सर से, फिर मुझे फिर उन्होंने मुझको बोला कि नहीं यार शिवी तुमको एक्सपोजर की जरूरत है अभी, तुम चीजों को और वो करो क्योंकि इस इसमें तो बहुत मुश्किल होगा तुमको आगे की लाइफ में भी, फिर मुझे उनसे भी काफी चीजें सीखने, उन्होंने मुझे काफी देर समझाया चीजों के बारे में, फिर मैंने वो चीजें अपने अंदर इम्प्रोवाइज की कि हाँ वोकल होना पड़ेगा, आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए सामने वाले वो करने के लिए, क्योंकि जब मैंने बैंकिंग का एग्जाम दिया मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू निकला, क्योंकि नहीं निकला क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरे को नहीं पता था इंटरव्यू कैसे ट्रैक कर, कैसे ट्रैक करते, कैसे मैं कैसे अपने आप उसको ले जाऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या ड्राइव कर रही हूँ, वो कुछ मुझसे पूछ रहा है, मैं बोल रही हूँ बट मैं शायद उनको इतना अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ चीज़ों को लेके। मेरी वेटिंग रही, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट किया, मेरे को नेक्स्ट ईयर 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले उसी इंटरव्यू में, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम वेटिंग में रह गई थी। इसमें समझ गई ना, इंटरव्यू को ड्रैग करना होता है इंटरव्यूअर को, उनको अपने क्वेश्चंस तुम्हें तुम्हारे मुंह से बोले हुए शब्दों से ही वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो कभी ऐसा मत बोलिए ना कि वो आपको अपने क्वेश्चन से फंसा सके। फिर मेरे को समझ में आया इंटरव्यू को इतना टफ चीज नहीं, हाँ मैं भी कर सकती हूँ चीज़ों को। वो एक बार का मेरा एक्सपीरियंस था, फिर वहाँ सर ने मुझसे बोला कि चीज़ों को चेंज करो, इम्प्रोवाइज करो अपने अंदर, ये चीज की ये की कमी, इस चीज की कमी कि मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दी उसमें कुछ खास अच्छी नहीं, तो उनको लगा कि नहीं लड़की को जरूरत है अभी चीज़ों को वो करने के लिए। ये सब चीज़ें बदली। दूसरा ये कि जब आप दुनिया में निकलते हो, ऊपर से फिर मैं हमेशा घर में रही, मैं कभी घर से बाहर ही नहीं। जब मेरी जॉब लगी देन मैं घर से बाहर गई, तो घर के बाहर का एक्सपीरियंस ही दूसरा होता है। वहाँ तो मैं कुछ भी हाथ में नहीं आके मिलता ना, वही ना कि आपको खुद ही मार्केट जाना है, खुद ही सामान लेके आना है, सब खुद ही करना है। बीमार भी हो तो मैं मम्मी नहीं है कुछ देने के लिए, मैं खुद ही बना रही। तो होता है ना चीजें, एक डिपेंडेंट हो जाता है इंसान खुद पे। हाँ मैं कोई सब सब कुछ करना, घर में रहो तो सब हो रहा है उतना ऐसा था, हाँ मम्मी पापा हैं हो जाएगा चीजों को। तो कुछ चीजें चेंज हुई, और सबसे बड़ा तो वही था जब मेरा इंटरव्यू नहीं निकला तब मुझे समझ में आया कि मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है अपग्रेड होने की। तो उसके बाद मैंने किया, नेक्स्ट ईयर निकाला, नेक्स्ट ईयर मेरे को 80 मार्क्स मिले, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में ही बोला, ऐसा होता नहीं, मेरे को पैनल वाले बोल रहे हैं कि मैम बेटा आप तैयार रहिएगा आपको आप बैंक ज्वाइन करने के लिए। मैंने कहा सर मैं तो पहले से तैयार हूँ, बस बुला लीजिए आप। वो मेरे लिए वो जो लाइन थी ना वो लगा, अरे यार ये सबसे अच्छा लगा मुझे पूरे इंटरव्यू का ये पार्ट। कितने मार्क्स आज जब मैंने पूछा था इतने मार्क्स में से सिलेक्शन वाले किसी को नहीं मिले जितने मुझे मिले थे। इवन दो कि मेरे मेंस में मेरे ओवरऑल रिटर्न में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मेरे को लगा था मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा शायद इस बार। मेरे ओनली 8 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर थे, तो मेरे को लगा नहीं इस बार नहीं निकले। बट मेरे को इंटरव्यू में इतने ज्यादा मार्क्स मिले कि वो मेरा कन्वर्ट हो गया फाइनल में, अदरवाइज इतने मार्क्स में कभी कन्वर्ट नहीं होता। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरी लाइफ का।
सो मैम यू आर गोइंग रियली ग्रेट। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं और आप खुद को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं?
देखो फिलहाल ये कि पहले मेरे को ऑफिसर कैडर चाहिए था, अभी तो मैं बैंकिंग में हूँ, बैंकिंग सेक्टर में। बट लेकिन हाँ मेरा आगे का प्लान यही है कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर को छोड़ने का, मैं ये पूरा ट्राई करूंगी कि मैं कुछ और बेटर कर पाऊँ। मेरे को यहाँ तो अपना ऐसा नहीं लगा, मेरे को फाइनल स्टेप तो ये नहीं दिख रहा है फिलहाल अपना, उनको कुछ चेंज करना है कुछ और इससे बेटर वर्जन। जो कि थोड़ा बैंकिंग में कहीं ना कहीं प्रेशर है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि एक आप एक ऑफिसर हैं तो आपको सब चीज़ों को सोचना पड़ता है, हर चीज़ में टारगेट्स हैं या सेल्स का है जो भी, तो आपको उस तरह से ही सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे को लग रहा है कि अभी मुझे कम्फर्ट वाली जॉब ही चाहिए और सैलरी भी चाहिए साथ का साथ, LIC छोड़ी क्योंकि सैलरी कम थी, बैंक का ही सैलरी अच्छी है बट प्रेशर है। मेरे को प्रेशर भी नहीं चाहिए, मेरे को सैलरी भी चाहिए और कम्फर्ट भी चाहिए। तभी मैं खुद को सोच रही हूँ कुछ और अच्छा करूँ, या फिर CGL या PCS ऐसा कुछ ट्राई करूंगी। हो जाता तो गुड इनफ, नहीं होता तो फिर बैंकिंग सेक्टर में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं बचा है।
जी हाँ। तो एट लास्ट कुछ कुछ टिप्स जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें, योर सक्सेस मंत्रा।
तो मेरी तरफ से सबसे बड़ा टिप्स यही है कि यार हमेशा अपना गोल सेट कर लो, अगर तुमको वो चीज चाहिए तो फिर चाहिए अटैनिक हो, फिर कितना भी कम्फर्ट जोन है। फिर ये नहीं आना चाहिए माइंड में यार अभी ठंड है ना, अभी आप सो लेते, एग्जाम तो 2 महीने बाद है ना, तो पढ़ लेंगे, ये नहीं आना चाहिए हमेशा। तो हमेशा अपना माइंड को स्टेबल रखो कि हाँ चीजों पर फोकस रहो कि ये चीजें हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी बहुत सारे फेस्टिवल्स आया, एग्जाम्स आते थे, दिवाली आई, मेरा एग्जाम दिवाली के दिन मेरा रिजल्ट आया था, वो भी रूरल बैंक का यार। उसके लिए मतलब मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा था यार क्यों नहीं निकला मेरा, मैं पूरी रात रो रही थी। अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ नहीं निकला, मैं कहाँ गाँव में रहती, वही लगता है नहीं। उस टाइम जो जॉब लेती तो वो सब कुछ अच्छा लगता है। वही ये फोकस रहो, कंटिन्यू करते रहो चीज़ों को, एक टाइम पे जरूर हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ में। ये बात अलग है कि उतना जो आप सोच रहे हो वो ना हो, बट लेकिन जो बेटर होगा वो मिलेगा आपको। इसलिए हमेशा चीजों में फोकस रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो, कभी ना कभी ऐसा नहीं हो, कभी आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। आपकी किसी भी चीज में, आप किसी भी सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं चीजों को, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ से देखा है, मैंने जॉब की 9 to 5 की, मैं सुबह मैं 5 बजे आती थी, मेरे पास मेरे को काम रहता था, मेरी नींद नहीं खुलती थी, मतलब इतनी नींद आती थी मुझे रात में, मैं पढ़ नहीं पाती थी। इस चक्कर में सुबह 4 बजे उठती थी, मैंने ठंड के टाइम में दिसंबर जनवरी मैंने सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई की, क्योंकि मेरे को 10 बजे ऑफिस जाना है, तो मैं 4 से 9 पढ़ती थी, मैंने वो 5 घंटे निकालने पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही 5 घंटे हैं। बैंकिंग एग्जाम इतना ज्यादा टफ होता है, इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि टाइम मैनेजमेंट करो चीजों में और फोकस रहो और हमेशा अपने गोल को देखो कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। मेरा तो सबसे बड़ा टिप्स यही आप लोगों को है कि इस चीज हर चीज पर अपनी चीजों को हमेशा स्टिक रहिए, फोकस्ड रहिए और पढ़ते रहिए।
ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। सो डैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करिए द मृदु सचान शो के पेज को। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।